देखिए भाई आगे सबक। फइन सुम्मिय बिही अय बिल मुअन्नस अल मानवी मुज़क्करुन फशर्तुहु फी सबबियति मनअ अस-सर्फ ज़ियादतु अला अस-सलासा لأن الحرف الرابع في حكم تاء التانيث قائم مقامها فقدم وهو مؤنث معنوي سماعي باعتبار معناه الجنسي إذا سمي به رجل منصرف لأن التانيث الأصلي زال بالعلمية للمذكر من غير أن يقوم شيء مقامه والعلمية وحدها لا تمنع الصرف।
भाई गुज़श्ता सबक में हमने असबाब मनासर्फ में से तानीस के बारे में पढ़ना शुरू किया था भाई, और मैंने आपको बतलाया कि एक होता है मुजक्कर और एक है मुअन्नस। मुअन्नस उसको कहते हैं जिसके अंदर कोई तानीस की अलामत पाई जाए, और जिसके अंदर तानीस की अलामत ना हो उसको मुजक्कर कहते हैं। और तानीस की अलामतें तीन हैं, एक ता है और एक अलिफ मकसूरा है और एक अलिफ ममदूदा है। और इसी तरह ये ता कभी लफ्जों में आती है, कभी मुकद्दर होती है, तो उसको तानीस मानवी कहते हैं। तो गोया तानीस दो किस्म पर हो गई, एक लफ्जी और एक मानवी। तानीस लफ्जी वो जिसमें लफ्जों के अंदर कोई तानीस की अलामत हो, और तानीस मानवी जिसमें ता मुकद्दर हो यानी लफ्जों में कोई तानीस की अलामत न हो। तो अब आपको बतला रहे हैं कि वो तानी से लफ्जी जो ता के साथ हो उसकी शर्त यह है कि वो आलम होना चाहिए। भाई क्या होना चाहिए? आलम होना चाहिए, तभी वो गैर इंसिराफ का सबब बनेगी। भाई वजह इसकी यह है कि जो ता है ये कभी कलिमे के साथ जुड़ जाती है और कभी उससे जुदा हो जाती है, और गैर इंसिराफ के लिए कवि सबब चाहिए। भाई तो यह तानीस बिता ज़ईफ सबब है, कवि नहीं, और गैर इंसिराफ के लिए कवि सबब चाहिए, इसलिए क्योंकि गैर इंसिराफ कलीमे को असल से यानी मुनसरिफ होने से निकालकर गैर मुनसरिफ बना देता है, तो उसके लिए कवि सबब चाहिए। तो उसके लिए फिर आलमियत की शर्त लगा दी कि जब आलमियत आ जाएगी उस कलीमे में तो अब वो ता कलीमे के साथ लाजिम हो जाएगी, जुदा नहीं होगी, यानी बिकदर इल इम्कान। भाई और दूसरी वजह यह जिक्र की क्योंकि जब ये ता के साथ किसी लफ्ज को किसी का आलम बना दिया जाता है तो दरअसल ये वज़ई सानी होती है, और कलीमे को जिन हरूफ के साथ वज़ा कर दिया जाए वो उससे जुदा नहीं होते। तो ये ता भी अब कलीमे के साथ पुख्ता हो गई, अब उससे जुदा नहीं होगी। भाई और मैंने यहां आपको बतलाया था कि तानी सुबिताई शर्तुहुल अलमियतु, कि ये अलअलमियत का माना जो है साहिब जामी ने आई अलमियतुल इस्म मुअन्नस के साथ किया। बतलाना यह चाहते हैं कि अलअलमियत के अंदर जो अलिफ्लाम है यह इसमें इशारा है किसकी तरफ? कौन खास अलमियत की तरफ, और वो कौन किस चीज की अलमियत है? इसमें मुअन्नस के तानीस बिता में शर्त यह है कि वो जो इसमें मुअन्नस है उसकी अलमियत, उसका आलम होना शर्त है। वो जो इसमें मुअन्नस है उसका आलम होना शर्त है। तो ये साहिबे जामी ने ये इसको अलिफ्लाम को इवज या तो इवज बनाया मुजाफिले का या इसके जरिए इशारा किया। सवाल ये कि अलमियत ये तो या मुशद्दद और गोलता साथ जुड़ी हुई है, और ये या मुशद्दद और गोलता तो मस्तर बनाने के लिए लाई जाती है, और इसका तर्जमा किसके साथ किया जाता है? कौन शय मसा आलमियत है तो कौन शय आलमन, एक शय का आलम होना, और किसकी बात चल रही है यहां? तानीस की। तो इबारत क्या बन जाएगी? कौन तानीस आलमन या कौन हू आलमन, तानीस का आलम होना। और तानीस का आलम होना ये तो हो नहीं सकता, तानीस तो सिफत है और आलम तो जात है। भाई तो सिफत जात कैसे हो सकती है? भाई तानीस सिफत है, वो आलम वो जात कैसे बन सकती है? तो चूंकि यहां खराबी लाजिम आती थी अगर इस तरह तर्जमा किया जाता, तो इसलिए साहिबे जामी ने इसका तर्जमा किसके साथ किया कि अलिफ लाम इशारा है किसकी तरफ? अय अलमियतुल इस्मिल मुअन्नस की तरफ इशारा है कि वो इसमें मुअन्नस क्या हो। तानी से लफ्जी बिताज में शर्त है, क्या शर्त है? उस इसमें मुअन्नस का आलम होना, उस इसमें मुअन्नस का आलम होना शर्त है। भाई और फिर इन्होंने यह भी बताया आपको कि तानीस मानवी के अंदर भी आलमियत शर्त है, लेकिन दोनों में फर्क है। तानीस लफ्जी बिता जो है उसमें आलमियत शर्त थी वजूब गैर इंसिराफ के लिए, यानी वो गैर इंसिराफ का सबब बनता था वजूबन जब आलमियत आ जाती थी, जबकि तानीस मानवी जो है वो गैर इंसिराफ का सबब बनती है जवाजन भाई। हां उसके साथ तीन शर्तों तीन चीजों में से कोई एक और पूरी हो जाए तो फिर तानीस मानवी भी वजूबन गैर इंसिराफ का सबब बनेगी। और वो तीन चीजें कौन सी हैं कि वो तीन हरूफ से जायद होना चाहिए कलीमा, अगर तीन से जायद नहीं है तीन हरूफ वाला है तो फिर कम अज कम दरमियान वाला मुतहर्रिक होना चाहिए, अगर दरमियान वाला मुतहर्रिक भी नहीं है तो कम अज कम वो कलीमा अजमी होना चाहिए। वजह यह कि इसकी वजह से कलीमे में सिकल आएगा भाई, तीन हरूफ से जो कलीमा जायद हो जाहिर सी बात है वो जुबान पर सकील होगा। इसी तरह दरमियान वाला एक लफ्ज है, दरमियान वाला हर्फ मुतहर्रिक है और एक का दरमियान वाला हर्फ साकिन है, जैसे जरबुन और जराबुन, तो जाहिर सी बात है जरबुन इसकी अदायगी जुबान पर आसान है, तो दरमियान वाला जब मुतहर्रिक होगा तो सिकल आ जाएगा। या फिर अगर ऐसा भी ना हो तो कलीमा अजमी होना चाहिए, क्योंकि अरबों के लिए अजमी जुबान का कलीमा उनकी जुबान पर सकील होगा, तो इसलिए इन तीन में से कोई एक चीज जरूर होनी चाहिए ताकि कलीमे में सिकल पैदा हो जाए। लिहाजा अब हिंदुन जो है कहते हैं उसको मुनसरिफ पढ़ना भी जायज, गैर मुनसरिफ पढ़ना भी जायज। मुनसरिफ पढ़ना क्यों जायज, क्योंकि एक सबब आलमियत तो है, दूसरा सबब तानी से मानवी है, लेकिन वो तानी से मानवी उसकी वजह से कोई कलीमे में सिकल नहीं आया, जब सिकल नहीं आया तो कलीमा अभी भी खफीफ है, जब खफीफ है तो तनवीन भी पढ़ो कसरा भी पढ़ो भाई, मुनसरिफ इस्तेमाल करो। और आप चाहें तो इसको गैर मुनसरिफ भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहरहाल दो सबब आ तो गए हैं, एक आलमियत है और एक तानी से मानवी है। जबकि जैनब सकर और माहौजूर इनको गैर मुनसरिफ ही पढ़ेंगे, क्योंकि इनमें एक तो आलमियत है और एक तानी से मानवी है, और तानी से मानवी के साथ उसके वजूब की शर्त भी पूरी हो रही है कि तीन हरूफ से जायद हो या दरमियान वाला मुतहरिक हो या कलीमा क्या हो आजमी हो भाई। आगे देखिए भाई आज का सबक भाई कहते हैं फइन सुम्मिय बिही अय बिल मुअन्नसिल मानवी मुज़क्करुन फशर्तुहु फी सबबियति मनअ सर्फ ज़ियादतु अला सलासा। यहां से अब यह बयान करेंगे कि भाई एक लफ्ज है उसके अंदर तानी से मानवी है, आप ये किसी मुजक्कर का नाम रख देते हैं, तवज्जो है लफ्ज में कौन सी सिफत है, तानी से मानवी वाली सिफत है, आप किसी मुजक्कर का नाम रख देते हैं तो अब आलमियत भी आ गई तो क्या यह तानीस मुअसर होगी। अब तो यह नाम किसका रखा है, मुजक्कर का नाम रखा है, अब तो यहां तानीस को मुअसर नहीं होना चाहिए। तो आपको बताएंगे कि भाई अगर ये मुजक्कर का नाम रख दें तो फिर वो तीन हरूफ से जायद हो तो फिर ये तानी से मानवी अभी भी सबब बनेगी, किसका, गैर इंसिराफ का। मसलन देखो कदमुन, कदम अरबी में पांव को कहते हैं, पांव भाई इब्तांग का वो नीचे वाला हिस्सा जिसमें जूते पहने जाते हैं इसको अरबी में कदम कहते हैं और उर्दू में क्या कहते हैं, पांव भाई। अब ये जो कदम है ये अरबी में मुअन्नस इस्तेमाल होता है, ये जो जिस्म के आजा दो दो हैं ये सब अरबी में मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं, यद हाथ कितने हैं दो, आंखें कितनी हैं दो, कान कितने हैं दो, और इसी तरह पांव कितने हैं दो, तो जिस्म के जो जो भी आजा हैं, कोहनियां हैं कितनी हैं दो भाई, तो जिस्म के जो जो आजा दो दो हैं वो सब अरबी में मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं, तो कदम भी कितने दो, तो ये मुअन्नस इस्तेमाल होता है और इसमें कोई तानीस वाली अलामत नहीं, न गोलता है न अलिफ मकसूरा है न अलिफ ममदूदा है, तो इसमें तानीस मानवी है। और ये मुअन्नस मानवी इसको किसी मुजक्कर का नाम रख दिया, मसलन कदम उन किसी आदमी का नाम रख दिया, तो अब देखो ये जब मुजक्कर का नाम रख दें तो फिर ये तानी से मानवी तब मुअसर बनेगी जब तीन हरूफ से ज्यादा हो, और कदमुन तो तीन हरूफ पर मुश्तमिल है, लिहाजा ये सबब नहीं बनेगा गैर इंसिराफ का। अब ये मुनसरिफ इसको मुनसरिफ ही पढ़ेंगे, जानी कदमुन रअयतु कदमन मररतु बि कदमी। और अगर तीन हरूफ से ज्यादा हो, मसलन अक़रब, अक़रब अरबी जुबान में अक़रब जो है बिच्छू को कहते हैं, बिच्छू को कहते हैं, और ये अरबी में मुअन्नस इस्तेमाल होता है, ये अरबी में मुअन्नस इस्तेमाल होता है, जैसे वो साहिबे काफिया जो है इनकी नजम है, जिसमें उन्होंने अशआर के अंदर मुअन्नस मानवी जो है उनको जमा किया है भाई, तो उसमें वो फरमाते हैं वह जहन्नम सुम्मा सईरु व अक्रबू, वह जहन्नम सुम्मा सईरु व अक्रबू वल अर्जु सुम्मल इस्तु वल अजुदानी। तो देखा अक्रब को उन्होंने किस में शुमार किया है, मुअन्नस मानवी में शुमार किया है। तो ये अक्रब बिच्छू को कहते हैं और ये मुअन्नस इस्तेमाल होता है अरबी जुबान में। अब ये किसी शख्स का नाम रख दिया अक्रब तो ये तीन हरूफ से जायद है, लिहाजा अब यह तानी से मानवी मुअस्सिर बनेगी और कलिमे में एक अलमियत आ गई, एक तानी से मानवी आ गई तो यह कलिमा गैर मुनसरिफ होगा। जैसे देखो तलहतु किसका नाम है, मुजक्कर का नाम है, तो एक अलमियत है और एक साथ ताय तानीस है तो लिहाजा यह गैर मुनसरिफ है। तो यहां पर अकरब के अंदर यह जो चौथा हर्फ है यह उस्ता के कायम मकाम है, यह उस्ता के। तो जब अकरब किसी मर्द का नाम, जैसे तलहा के अंदर वो तानीस की ता मौजूद थी तो वो मुअस्सिर थी, गैर इंसराफ का सबब बन रही थी, तो अकरब के अंदर भी ये जो बा है ये किसके कायम मकाम है, उस ता के कायम मकाम है, लिहाजा ये तानीस मुअस्सिर होगी और गैर इंसराफ का सबब बनेगी। कहते हैं फइन सुमिया बिही ऐ बिल मुअन्नसिल मानवी, अगर मौसूम किया जाए बिही, हा जमीर का मर्जा बतलाया, ऐ बिल मुअन्नसिल मानवी, अगर मौसूम किया जाए मुअन्नस मानवी के जरिए, यानी नाम रखा जाए मुअन्नस मानवी के जरिए, मुजक्कर उन किसी मुजक्कर का, फशर्तुहु फी सबबियति मनअ सर्फी, तो उसकी शर्त जो है मनअ सर्फ के सबब होने में, अज़्ज़ियादतु अलस सलासती, कि उसके हुरूफ तीन से जायद होने चाहिए, लिअन्नल हर्फ अर्राबिअ फी हुक्मि ताए तानीस क़ाइमुम मकामहा, इसलिए क्योंकि जो चौथा हर्फ है वो ताए तानीस के हुक्म में होगा, क़ाइमुम मकामहा उसका कायम मकाम होगा। चौथा हर्फ किसके हुक्म में, ताए तानीस के हुक्म में उसका कायम मकाम होगा। तो जब अक्रब किसी मर्द का नाम रखा, चौथा हर्फ मौजूद है या नहीं, चौथा अभी भी मौजूद है, जैसे तलहा के अंदर ता मौजूद थी तो वह गैर इंसराफ का सबब बनी थी, तो यह बा भी क्या है अकरब में गैर इंसराफ का सबब बनेगी। यह सिर्फ चौथे की बात नहीं है, पांच हरूफ वाला हो तो पांचवां हर्फ जो है वह क्या बनेगा, ताके कायम मकाम बन जाएगा। फकदमुन वह हुआ मुअन्नसुन मानवीयुन सिमाईयुन बेअतिबारी मानाहुल जिनसी इदा सुम्मिया बिही रजुलुन, पस कदम जो है वो मुअन्नस मानवी है, कदम में कोई तानीस वाली अलामत है गोलता या अलिफ मकसूरा या ममदूदा, तो यह मुअन्नस मानवी है। सिमाई है यानी अरबों से हमने इसको मुअन्नस ही सुना है, इस मुअन्नस मानवी को क्या कहते हैं, सिमाई, यानी अरबों से हमने इसको सुना है कि वो इसको मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, और ये मुअन्नस मानवी है, सिमाई है, बेअतिबारी मानाहुल जिनसी, अपने जिनसी माना के एतबार से, किस एतबार से, जिनसी माना क्या है कदम का, कदम किसको कहते हैं अरबी जुबान में, पांव को कहते हैं, तो ये जिन्स है पांव, जिन्स से पांव को कदम कहते हैं और ये अरबी में मुअन्नस इस्तेमाल होता है। तो कहते हैं बेअतबारी मानाहुल जिनसी, ये तो ये मुअन्नस मानवी सिमाई है, बेअतबार मानाहुल जिनसी अपने जिनसी माना के एतबार से, इदा सुम्मिया बिही रजुलुन जब इसके साथ किसी आदमी को मौसूम किया जाए यानी उसका ये नाम रखा जाए, फमुनसरिफुन तो ये मुनसरिफ होगा, लिअन्न तानीस अल असलिया ज़ाल बिल आलमियती लिल मुज़क्करी, इसलिए क्योंकि वो तानीस जो असली थी वो खत्म हो गई, जायल हो गई, बिल आलमियत लिल मुज़क्करी, मुज़क्कर के नाम रखने की वजह से, मुज़क्कर का नाम रख दिया तो वो तानीस तो खत्म हो गई, मिन गैरी अन यकूम शैउन मकामहु, बगैर इसके कि कोई और चीज उसके कायम मकाम हो जाए। तीन हरूफ थे, चौथा हर्फ भी नहीं है, वरना वो ता के कायम मकाम हो जाता तो तानीस खत्म हुई, अब यह गैर इंसराफ का सबब नहीं बनेगी। वल आलमियत वहदहा ला तमनाउ सर्फा, और आलमियत अकेली जो है वो सर्फ को मना नहीं करती, वो अकेली कलिमा को गैर मुनसरिफ नहीं बनाती। व अकरब, और अकरब जो है वह हुआ मुअन्नसुन मानवीयुन सिमाईयुन बेअतिबारी मानाहुल जिनसी, ये मुअन्नस मानवी है, सिमाई है यानी अरबों से हमने इसी तरह इसको सुना है, बेअतिबारी मानाहुल जिनसी अपने जिनसी माना के एतबार से। अकरब एक मूजी जानवर है, अजियत तकलीफ देने वाला, तो ये अकरब जो है ये मुअन्नस है क्योंकि یہ مؤذیتم من المؤذیات ہے. کیا ہے؟ مؤذیتن. دیکھو مؤذیتن میں تانیس والی تا آ رہی ہے یا نہیں؟ تو بئی تاویل یہ مؤنث ہے بھائی. توجہ ہے. جیسے معجزتن, انبیاء کے معجزات ہوتے ہیں تو معجزہ مؤنث استعمال ہوتا ہے. اس کا موصوف محذوف ہے. ای آیتن معجزتن, ایسی نشانی جو دوسروں کو کیا کر دیتی ہے؟ عاجز کر دیتی ہے. تو یہاں پر بھی عقرب جو ہے یہ مؤنث استعمال ہوتا ہے. کس تاویل پر؟ مؤذیتن, کہ یہ اذیت دینے والی ایک چیز ہے. من المؤذیات, یا پر شد نہ پڑھیں, مؤذیتن من المؤذیات, کیونکہ یہ مؤذیات میں سے ایک مؤذی چیز ہے, اذیت دینے والی چیزوں میں سے ایک اذیت دینے والی چیز ہے بھائی. تو کہتے ہیں واقرب وہو مؤنث معنوی سماعی. تو یہ مؤنث معنوی ہے. کس اعتبار سے مؤنث معنوی ہے؟ اپنی جنس کے اعتبار سے, یعنی جنسی معنی. جب اس کا معنی بچھو کے کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ اس معنی کے اعتبار سے یہ مؤنث استعمال ہوتا ہے عربی میں. جیسے قدم کا لفظ, وہ معنی جنسی کے اعتبار سے مؤنث ہے. یعنی معنی جنسی کیا؟ یعنی پاؤں. جب قدم کا معنی پاؤں کے کیا جائے عربی زبان میں تو یہ مؤنث استعمال ہوتا ہے. اسی طرح عقرب کا معنی جب بچھو کی کیا جائے تو یہ جو اس کا جنسی معنی ہے, ایک خاص جنس کا نام ہے, ایک خاص چیز کا نام ہے, اس اعتبار سے یہ کیا استعمال ہوتا ہے عربی میں؟ مؤنث. یہ معنی ہے. کہتے ہیں وہ ہوا مؤنث معنوی سماعی باعتبار معناہ الجنسی, اور وہ مؤنث معنوی سماعی ہے اپنے معنی جنسی کے اعتبار سے. اذا سمی بہ رجل, جب اس کے ساتھ کسی آدمی کو موصوم کیا جائے, ممتنع صرفہا, تو اس کی صرف ممتنع ہے, یعنی اس کو غیر منصرف پڑیں گے. لانہ وان زالت تانیس بعلمیتہ للمذکری, اس لیے کیونکہ اگرچہ اس کی تانیث زائل ہو گئی ہے مذکر کے لیے علم ہونے کی وجہ سے, فالحرف الرابع قائم مقامہ, تو چوتھا حرف جو ہے وہ اس تانیث کے قائم مقام ہے. بدلیل انہ اذا صغ, بھائی چوتھا حرف, ادھر دیکھیں, چوتھا حرف تانیث کے قائم مقام ہے. تانیث کے, بھائی کیا وجہ ہے؟ اس میں آپ نے چوتھے حرف کو تانیث کے قائم مقام بنایا. قدم ان میں آپ تیسرے کو قائم مقام بنا دیتے. قدم ان میں, توجہ ہے, ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے. آپ نے کہا قدم ان کسی مذکر کا نام رکھو تو یہ غیر منصرف نہیں بنے گا کیونکہ اس میں تانیث ختم ہو چکی. بھائی اس میں تیسرا حرف ہے, اس کو کس کے قائم مقام کر دو؟ تائے تانیث کے قائم مقام کر دو. تیسرے حرف کو تائے تانیث کے قائم مقام کر دو. جیسے عقرب میں آپ نے چوتھے حرف کو کس کے قائم مقام کیا ہے؟ توجہ نہیں ہے میرا خیال. قدم ان میں کیا کرو؟ تیسرا حرف ہے, اس کو بھی تا کے قائم مقام کر دو. جیسے عقرب میں آپ نے کیا کہا؟ چوتھا حرف کس کے قائم مقام ہے؟ تا کے قائم مقام. کہتے ہیں نہیں بھائی, آپ قدم ان کی ذرا تصغیر لے آئیں, اس کی تصغیر آتی ہے قدیمتن. دیکھو میم کے بعد تا الگ آ رہی ہے, معلوم ہوا یہ تا الگ تھی اور قدم ان میں آ کر یہ تا کیا ہو گئی؟ حذف ہو گئی. تو میم تو قائم مقام نہیں ہے تا کہ, بھائی تا الگ تھی جو اب مقدر ہے, حذف ہو چکی ہے. اور عقربن کی تا, اس کی تصغیر نکالو تو کیا بنے گی؟ عقیربن. عقرب کی تصغیر عقیربن آتی ہے. اب دیکھو عقیربن تصغیر لیا ہے, اس میں بھی گول تا موجود نہیں ہے, معلوم ہوا یہ با اس تا کے قائم مقام ہو سکتی ہے. جبکہ قدیمتن میں تو میم کے علاوہ تا الگ تھی تو وہ میم اس کا قائم مقام نہیں قرار دے سکتے, لیکن عقیربن اس میں تو تا ہے ہی نہیں, معلوم ہوا یہ با خود ہی کس کے قائم مقام ہے؟ تا کے قائم مقام ہے. تو دیکھیے اب کتاب پر, کہتے ہیں واقرب وہو مؤنث معنوی سماعی باعتبار معناہ الجنسی, اور عقرب جو ہے وہ مؤنث معنوی سماعی ہے اپنے جنسی معنی کے اعتبار سے. اذا سمی بہ رجل ممتنع صرفہا, جب اس کے ساتھ کسی آدمی کو موصوم کیا جائے, یعنی کسی آدمی کا یہ نام رکھا جائے, ممتنع صرفہا, تو اس کی صرف ممتنع ہے بھائی. لانہ وان زالت تانیث بعلمیتہ للمذکر, اگرچہ اس کی تانیث جو ہے وہ زائل ہو گئی ہے مذکر کے لیے علم ہونے کی وجہ سے. فالحرف الرابع قائم مقامہ, تو چوتھا حرف جو ہے وہ اس تانیث کے قائم مقام ہے. بدلیل انہ اذا صغر قدم, इस दलील से कि जब तस्गीर लाई जाए कदम उनकी तो ज़हरत ताउल मुकद्दरतु, तो ताए मुकद्दरा जाहिर हो जाती है। कमा तख्तजी कायदतु तस्गीरी, जैसे कि तस्गीर का जाबिता तकाजा करता है। तस्गीर का जाबता क्या तकाजा करता है? कि वो अशिया को अपनी असल की तरफ लौटा देता है, तो यहां भी असल की तरफ लौटेगा कदम और ता जाहिर हो जाएगी। फयुकालु कुदैमतुन, तो कुदैमतुन कहा जाएगा बिखिलाफ अक्रबिन, बखिलाफ अक्रब के। फइन्नहु इदा सुगिरा युकालु उकैरिबुन, इसलिए क्योंकि जब उसकी तस्गीर लाई जाए तो यूं कहा जाता है उकैरिबुन, मिन गैर इजहार ताई, बगैर ता को जाहिर किए। देखा इसमें ता जाहिर नहीं हुई, लिअन्न अल-हर्फ अर-राबिअ क़ाइमुन मक़ामहु, इसलिए क्योंकि चौथा हर्फ जो है वो इस ता के कायम मकाम है। फ़अक़रबुन इज़ा सुम्मिया बिही रजुलुन इम्तना सर्फुहु लिल-अलमियति वत्तानीसिल-हुक्मी, तो अक़रब जब इसके साथ किसी आदमी का नाम रखा जाए तो उसकी सर्फ जो है वो मुमतने होगी। लिल अलमियती, किसकी वजह से? आलम होने की वजह से। व तानीसिल हुक्मी, और तानीस हुक्मी की वजह से, यानी तानीस का हुक्म लगा दिया जाएगा इसमें, क्योंकि चौथा हर्फ किसके कायम मकाम है? ता के कायम मकाम है। बात समझ में आ गई? देखिए आगे भाई, अल मारिफतु अय तारीफ लि अन्न सबब मन इसर्फ हुआ वस्फु तारीफ लाजातुल मारिफा शर्तुहा अय शर्तु तासीरिहा फी मन इसर्फ अन तकून अलमियतन। मारिफा भाई से पहले मतन मतन देख लीजिए, कहते हैं अल मारिफतु शर्तुहा अन तकून अलमियतन, मारिफा भी सबब बनेगा गैर इंसिराफ का, लेकिन इसकी शर्त जो है अलम होना है। वो तारीफ कौन सी होनी चाहिए? अलम वाली तारीफ होनी चाहिए, तो सिर्फ ये सबब बनेगा, बाकी मारिफा की जो किस्में हैं वो गैर इंसिराफ का सबब नहीं बनेंगी। तवज्जो है? देखिए मैंने आपसे पूछा लाहौर में कौन से दो असबाब मनासर्फ हैं, आपने क्या कहा? अलमियत और एक तानीस है। भाई अलमियत असल सबब अलमियत नहीं है, बल्कि असल सबब तारीफ है, तारीफ है, लेकिन तारीफ की किस्मों में से सिर्फ अलमियत मुअसर है, इसलिए सिर्फ इसी को हम बोल देते हैं, वरना असल सबब क्या है? तारीफ है। तो तारीफ की और भी बहुत सी किस्में हैं, मारिफा की और भी किस्में हैं, लेकिन वो गैर इंसिराफ का सबब नहीं बनती। क्यों? देखो मारिफा की कौन सी किस्में हैं? तमाम जमीरें हैं, अस्माए इशारा हैं, अस्माए मौसूला हैं, आलाम है जो अलम लोगों के नाम होते हैं, इसी तरह मुआरफ बिल लाम है जिस पर अलिफ्लाम आ जाए, इनमें से किसी एक की तरफ कोई इसम मुजाफ हो जाए, और सातवीं किस्म है मारिफा बा निदा। इन सात किस्मों में से सिर्फ अलमियत सबब बनेगी गैर इंसिराफ का, बाकी किस्में नहीं। बाकी किस्में क्यों नहीं बनेंगी ये भी आगे बयान करेंगे, अभी समझ लें। ये आपको बतलाएंगे कि भाई जमीरें, अस्मा इशारा, अस्मा मौसूला, ये तो मबनियात हैं भाई, ये तीनों क्या हैं? मबनी। और गैर मुनसरिफ तो मुआरब होता है, तो ये तो गैर इंसिराफ का सबब नहीं बनेंगे। उसके बाद क्या आ गया? अलम, अलमियत सबब बनेगी। अगला क्या आया? अलिफ्लाम और इजाफत। भाई अलिफ्लाम और इजाफत, अलिफ्लाम और इजाफत, इसकी वजह से तो गैर मुनसरिफ पर कसरा आ जाता है। बास कहते हैं कसरा आता है, बास कहते हैं ये बाकायदा मुनसरिफ हो जाता है। क्या हो जाता है? तो अलिफ्लाम और इजाफत तो गैर इंसिराफ के मुखालिफ हो गए भाई, लिहाजा वो भी सबब नहीं बनेंगे गैर इंसिराफ का। और आखिरी रह गया मारिफा बनिदा। मारिफा बनिदा भाई, मारिफा बनिदा में तो कलिमा अक्सर मबनी बन जाता है, या रजुलो, या जैदो, या यूं कहते हैं कि ये मारिफा बनिदा जो है ये मुआरफ बिल्लाम के दर्जे में है। किसके? मुआरफ बिल्लाम के दर्जे में है, और मुआरफ बिल्लाम तो अलिफ्लाम तो गैर इंसिराफ के मुखालिफ है। भाई मारिफा बनिदा मुआरफ बिल्लाम के दर्जे में कैसे है? कहते हैं देखो, या रजुलु दरअसल इसी तरह है जैसे आपने यूं कहा हो या अय्युहर रजुलु। याद रखो, आगे चलकर आपको बताएंगे, या भी आलाय तारीफ, अलिफ्लाम भी आलाय तारीफ। किसी कलिमे को मारिफा बनाना हो तो एक सूरत यह है कि उस पर या ले आओ, एक सूरत क्या है? अलिफ्लाम ले आओ। निदा के मौके पर यह जो या आती है उस लफ्ज को मारिफा बना देती है, तो या भी आलाय तारीफ, अलिफ्लाम भी आलाय तारीफ, तो ये दोनों जमा नहीं हो सकते। लिहाजा रजुल बगैर अलिफ्लाम के है, तो अब मैं या के साथ निदा दे सकता हूं, या रजुलु। लेकिन अगर रजुल पर अलिफ्लाम आ जाए अर रजुल, तो ये इस पर तो अलिफ्लाम आ गया, एक आलय तारीफ आ गया, अब या अर रजुल मैं नहीं कह सकता, दोनों आलय तारीफ जमा हो जाएंगे। तो फिर दरमियान में अयुहा मुजक्कर के लिए और अयतुहा मुअन्नस के लिए ले आते हैं। तो अर रजुल को निदा देनी हो कैसे देंगे, या अयुहर रजुल। तो लिहाजा ये जो मारिफा ब निदा है ये मौरफ बिल्लाम के दर्जे में है। या रजुल किस दर्जे में है, या अयुहर रजुल के दर्जे में है। तो ये मौरफ बिल्लाम के दर्जे में है और अलिफ्लाम ये तो गैर इंसिराफ के मुखालिफ है, लिहाजा सिर्फ आलमियत सबब बनेगी गैर इंसिराफ का, बाकी कोई और तारीफ जो है गैर इंसिराफ का सबब नहीं बनेगी। जी देखिए अब किताब पर कहते हैं अल मारिफतु, और मारिफा जो है असबाब मना सर्फ में से। भाई मारिफा, मारिफा तो इसम होता है भाई, मारिफा होगा या नकेरा होगा, तवज्जो है। असबाब मना सर्फ चल रही और आप कई दफा यह बात जिक्र हो चुकी कि असबाब मना सर्फ किस कबील से हैं, औसाफ और आरास की कबील से हैं, और मारिफा वो तो इसम होता है, वो तो जात है भाई। तो आगे बतला दिया आई तारीफ, यानी के तारीफ है नहीं मारिफा होना, एक शय का मारिफा होना। तो मारिफा यहां किस माना में है, तारीफ के माना में है, तवज्जो है। यानी देखो इसम है मारिफा, तो तारीफ इस इसम की सिफत बन गई। अगर एक नकेरा हो इसम तो तनकीर उसकी सिफत होती है, वो नकेरा है। तो एक लफ्ज मारिफा है तो उसकी सिफत क्या, तारीफ। तवज्जो है, मालूम हुआ मारिफा है जात, तारीफ है उसकी सिफत। मारिफा है जात, तारीफ है उसकी सिफत। तो यहां जात बोलकर सिफत मुराद है, जात बोलकर, तो मारिफा बोलकर तारीफ मुराद है। या दूसरे लफ्जों में यूं कहो मारिफा है इसम, तारीफ है उसकी सिफत। ये यूं कहो मारिफा है महल और तारीफ है उसका हाल, उसकी हालत। इसम क्या होगा, या मारिफा होगा या नकेरा होगा। तो मारिफा या नकेरा ये है महल और तारीफ व तनकीर उसकी हालत है, क्या है। तो यहां पर भी मारिफा महल बोलकर हाल यानी उसकी सिफत मुराद है। तो आसान लफ्जों में यूं कह लो मौसूफ बोलकर सिफत मुराद है, ये यूं कहो महल बोलकर हाल मुराद है। सिफत के लिए मौसूफ चाहिए ना, तो ये मौसूफ उसके लिए महल है, ये महल है तो सिफत है, महल नहीं तो सिफत भी नहीं। जैद है तो जैद की सखावत है, जैद नहीं तो जैद की सखावत भी नहीं। तो जैद हुआ महल और सखावत हुई उसकी उसकी हालत, भाई क्या हुई उसकी हालत। तो महल और हाल कह लो या मौसूफ सिफत कह लो, बात एक ही है भाई। तो यहां मौसूफ बोलकर सिफत मुराद है या महल बोलकर हाल मुराद है, बात समझ में आ गई। इस पर इश्काल होता है भाई, मारिफा बोलकर हाल मुराद है, भाई आप सीधी तरह तारीफ कह देते, क्या कह देते, हमें तावील करना पड़ी कि मारिफा बोला है और मुराद क्या है तारीफ, मौसूफ बोला है और मुराद क्या है सिफत, या महल बोला है और मुराद क्या है हाल। इतनी लंबी तकरीर करना पड़ी, आप मुख्तसरन कह देते अत तारीफ, साहिब काफिया अ तारीफ कह देते। तो जवाब ये कि भाई पीछे वो नौ असबाब मना सर्फ इन्होंने इकट्ठे जिक्र किए थे, और वहां क्या आया था असबाब मना सर्फ, क्या था आदलों व वस्फों व तानीसों व मारिफतुन। जहां गैर मुनसरिफ का बाब शुरू हुआ था वहां आदलों व वस्फों व तानीसों व मारिफतुन, चूंकि वहां मारिफा जिक्र था तो वो था इजमाली जिक्र, अब हर एक की तफसील बयान कर रहे हैं ताकि दोनों एक दूसरे के मुआफिक रहें भाई। और वहां मारिफा क्यों लाए थे, वहां तारीफ क्यों नहीं कहा, वजह यह कि वहां शेर था, शेर का वजन नहीं रहता था, अगर तारीफ कह देते तो शेर का सारा वजन खराब हो जाता। तो इसलिए साहिबे काफिया मारिफा का लफ्ज लाए और मारिफा बोलकर तारीफ मुराद है। तो कहते हैं अल मारिफा तो अय तारीफ, मारिफा यानी के तारीफ, लिअन्ना सबब मन असर्फी हुआ वस्फ तारीफी ला दातुल मारिफती। भाई मारिफा बोलकर तारीफ क्यों मुराद लिया, क्योंकि असबाब मना सर्फ चल रहे हैं और असबाब मना सर्फ जात हैं या औसाफ हैं, भाई औसाफ हैं। तो कहते हैं लिअन्ना सबब मन असर्फी, इसलिए क्योंकि मना सर्फ का सबब जो है हुआ वस्फ तारीफी, वो तारीफ का वसफ है, ला जातुल मारिफती, ना के मारिफा की जात। भाई शर्तुहा ऐ शर्तु तासीरिहा फी मनई सर्फी, शर्तुहा ऐ शर्तुल मारिफती, किसकी शर्त, मारिफा की शर्त। और मारिफा से क्या मुराद, तारीफ, भाई तारीफ का लफ्ज मुजक्कर है, बल्कि तारीफ मस्तर है, मस्तर जो है मुजक्कर भी इस्तेमाल होता है, मुअन्नस भी। आपने मस्तर की तरफ अगर जमीर लौटानी हो तो मुजक्कर जमीर भी लौटा सकते हैं, मुअन्नस जमीर भी लौटा सकते हैं। चुनाचे कहते हैं अल मस्तरु कल मुखन्नस, मस्तर जो है वो मुखन्नस की तरह है, कद युजक्करु व कद युअन्नस, कभी उसको मुजक्कर लाया जाता है और कभी मुअन्नस। तो अल मस्तरु कल मुखन्नस, कद युजक्करु व कद युअन्नस। तो शर्तुहा की हा जमीर राजे है मारिफा को, और मारिफा से क्या मुराद है, तारीफ भाई। तो कहते हैं शर्तुहा, और ये मारिफा होने की शर्त जो है आई शर्तु तासीर हाफी मन सर्फी, यानी मन सर्फ में मुअसर होने की जो शर्त है, अंतकून आलमीयतन, के वो क्या होना चाहिए, आलम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आलम होना चाहिए भाई। यहां इश्काल होता है, मुश्किल मकाम है, तवज्जो से समझ लें भाई। इश्काल ये आलमियत का क्या माना, आलम होना, ऐ कौन उस शय आलमन, एक शय का आलम होना, और किस शय का आलम होना, यहां किसकी बात चल रही है, मारिफा, और मारिफा से क्या मुराद है, तारीफ, तारीफ का आलम होना, कौन तारीफी आलमन या कौनुहा आलमन कह लें, कौनुहा आलमन, तवज्जो है, मुश्किल मकाम है, खूब तवज्जो से। और अंतकूना आया इससे माकबल में, अंतकूना ये अन भी क्या करता है, तकूना को जिस फेल पर दाखिल होता है उसको मस्तर के माना में कर देता है। तो अंतकून आलमियतन, कि उसका आलम होना, भाई किसकी बात चल रही है, किसका आलम होना, मारिफा का। तो तकूना के अंदर हिया जमीर किसको राजे, मारिफा को, और अन इसको मस्तर बना देगा। और मस्तर किस तरह बनाते हैं, अंतकूना, ये अन क्या करेगा, तकूना को किस माना में कर देगा, कौन के माना में, किस माना में, काना या कूनू कौन, अन कौन के माने, मस्तर के माना में करेगा। और फिर क्या करते हैं, मस्तर की इजाफत किसकी तरफ करते हैं, फाइल की तरफ करते हैं। जैसे देखो जराबा जैदुन आमरान, जराबा जैदुन आमरान, मैं आपसे पूछता हूं मजमून जुमला क्या है, इस जुमले में क्या बात बयान हो रही है, तो उसका तरीका यह है कि वो जो फेल है उसका मस्तर निकालते हैं और फाइल की तरफ उसकी इजाफत कर देते हैं। इस जुमले जराबा जैदुन आमरान, जराबा का मस्तर क्या, जर्ब, और फाइल क्या, जैद, तो यूं कहेंगे जरबु जैदिन, और आगे मफूल या जार मजरूर को साथ वैसे ही जिक्र कर देते हैं। मैंने पूछा इस जराबा जैदुन आमरान इस जुमले में क्या बयान हुआ, इसका मजमून क्या है, आप क्या कहेंगे, जरबु जैदिन आमरान, इसमें जैद का अमर की पिटाई करना, देखो मस्तरी तर्जमा कर रहा हूं, इस जुमले में क्या बयान हुआ, जैद का पिटाई करना अमर की, जैद का अमर की पिटाई करना इस जुमले में बयान हुआ है, पिटाई करना, देखो मस्तरी तर्जमा कर रहा हूं, जुमला क्या था, जाराबा जैदुन आमरान, जैद ने अमर की पिटाई की, अब इसका जरा मस्तरी इसको बनाओ, मजमून जुमला निकालो, जरबु जैदिन आमरान, जरबु जैदिन आमरान, और फिद्दार होता तो उसको भी साथ जोड़ दो, जाराबा जैदुन आमरान फिद्दारी। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मजमून जुमला क्या है, आप क्या कहेंगे, जरबु जैदिन आमरान फिद्दार, इस जुमले के अंदर जरबु जैदिन आमरान फिद्दार बयान हो रहा है कि जैद, जैद का अमर की घर के अंदर पिटाई करना, यह बयान हो रहा है। अच्छा, आम फेल हो तो उसके फाइल की तरफ इजाफत करते हैं, यहां तो आया काना, काना फाइल नाकिसा में से है, इसके लिए एक इसम चाहिए, एक खबर, तो फिर काना की इजाफत इसके इसम की तरफ कर देते हैं क्योंकि वो फाइल के दर्जे में है, हत्ता के बाज उलमा उसको फाइल ही कहते हैं काना का, तो काना की इजाफत किसकी तरफ करेंगे, काना के इसम की तरफ, किसकी तरफ, तो यहां आया अंतकूना आलमीयतन, ये अंतकूना के अंदर हिया जमीर किसको राजे, मारिफा की तरफ राजे, तो अब अंतकूना इसको मस्तर बना देगा, बनाइए अंतकूना कौन, और कौन की इजाफत करें, हा जमीर की तरफ, कौनुहा, कौनुहा, हिया जमीर मरफू थी और ये कौनुहा हा जमीर मजरूर है, मुत्तसिल है, है वो भी वाहिद मुअन्नस की जमीर थी, ये भी वाहिद मुअन्नस की है, तो अंतकूना किस माना में हुआ, कौनुहा। अच्छा, आलमियतन, आलमियत के अंदर ये या मुशद्दद और गोलता, ये भी मस्तर वाली है, तो आलमियत का क्या माना, आलम होना, कौन आलम, किसका आलम होना, किसकी बात चल रही है, मारिफा की, तो आलमियत का माना भी हुआ कौन हुआ आलमन, आलमियत का माना भी क्या हुआ, कौनुहा अलमन, मारिफा का अलम होना। तवज्जो है, हा जमीर राजे है मारिफा को, और मारिफा से मुराद तारीफ है भाई। तो आलमियत किस माना में हुआ? कौनुहा अलमन। और अंतकुना किस माना में हुआ? कौनुहा। तो इबारत यूं बन गई, शर्तुहा कौनुहा कौनुहा अलमन। इबारत क्या बन गई? शर्तुहा कौनुहा कौनुहा अलमन। ये पहला कौनुहा किससे बना? अंतकूना से। और दूसरा कौनुहा अलमन ये किससे बना? अलमियत से। तो दो दफा कौन आ रहा है भाई? इश्काल समझ में आया? तो ये इश्काल होता है। तो साहिब जामी भाई अजीब तावील करेंगे, सारा इश्काल खत्म हो जाएगा। वो तावील ये करेंगे कि अलमियत जो है, अलमियत का तर्जमा कौनुहा अलमन न करो, इसका तर्जमा करो हाजन नौ। क्या तर्जमा करो? हाजन नौ। ये एक किस्म है, ये वाली किस्म। भाई देखो, तारीफ कई किस्म पर हो सकती है। तवज्जो है, अब सुनो जरा। तारीफ है जिंस, तारीफ है जिंस, और इसकी मुख्तलिफ अनवा है। जैसे देखो, हैवान है जिंस, और इसकी कई अनवा हैं। इंसान भी इसकी नौ, गाय बैल भी इसकी नौ, बकरी भी इसकी नौ, घोड़ा भी इसकी नौ, हाथी भी इसकी नौ। तो हैवान है जिंस, और ये सारी क्या है? इसकी अनवा। इसी तरह तारीफ मारिफा हो ना, किसकी बात कर रहा हूं? मस्तर की बात कर रहा हूं। तारीफ मारिफा हो ना, मारिफा होना की कई अनवा हैं। ये जिंस है और इसकी कई अनवा हैं। मसलन अलम होना, ये भी एक नौ है मारिफा की। इसी तरह इसमें इशारा होना, ये भी एक नौ है मारिफा की। इसमें मौसूल होना, ये भी क्या है? मारिफा की एक नौ है। और इसी तरह मुअर्रब बिल्लाम होना, ये भी क्या है? एक नौ। तो मालूम हुआ मारिफा है, तारीफ है एक जिंस, और आगे अलमियत वगैरह इसकी नौ है भाई। ये मारिफा मस्तर, मस्तर पे तवज्जो रखना, मस्तर की बात चल रही है, क्योंकि असबाब मना सर्फ किसकी कबील से हैं? औसाफ और आराज की। तो ये मारिफा होना अलम होने के साथ भी हो सकता है, इसमें इशारा होना इसके साथ भी हो सकता है, इसमें मौसूल होना इसके साथ भी हो सकता है, मुअर्रब बिल्लाम होना इसके साथ भी हो सकता है। मालूम हुआ अलमियत तारीफ की एक नौ है, तारीफ की एक नौ। अब इबारत बेहतरीन हो गई। अलमियत का क्या तर्जमा किया? हाजन नौ, ये वाली खास नौ, अलमियत वाली, अलमियत वाली खास नौ। तो क्या इबारत बन गई? अलमियत की जगह ले आए हाजन नौ, कौनुहा हाजन नौ, कौनुहा हाजन नौ। नई बात समझ में आई? अलमियत का क्या तर्जमा पहले किया था? कौनुहा अलमन। नहीं, ये तर्जमा ना करो। अलमियत का तर्जमा सिर्फ कर लो हाजन नौ, ये वाली नौ। अलमियत एक नौ, और इसमें इशारा होना दूसरी नौ, इसमें मौसूल होना तीसरी नौ। तो अलम होना ये क्या है? एक बाकायदा नौ है, उस मस्तर ही को नौ करार दे दिया। तो बात समझ में आ रही है? अंतकूना को अभी उसी तरह रखें, सिर्फ अलमियत को किस तावील में कर लिया? हाजन नौ भाई, तारीफ की कई अनवा हैं। तारीफ जो है अलमियत में के साथ भी हो सकती है, तारीफ इसमें इशारा के साथ भी, तारीफ इसमें मौसूल के साथ भी। तो वो सारी अनवा हैं तारीफ की, और मस्तरी तर्जमा करते जाओ, क्योंकि तारीफ भी क्या है? मस्तर है। तो अलम होना ये भी मस्तर, इसमें इशारा होना ये भी मस्तर, इसमें मौसूल होना ये भी मस्तर। तो इसकी कई अनवा हैं। तो इस तारीफ की कौन सी ये नौ यहां मुराद है? हाजन नौ, ये वली यानी अलमियत। तो इस सारे अलमियत को उठाओ, इसकी जगह हाजन नौ ले आओ। अंतकूना हाजन नौ, मारिफा की शर्त क्या है? अंतकूना हाजन नौ, कि वो ये वली नौ होनी चाहिए। अब अंतकूना को हटाओ और कौनुहा को ले आओ। व शर्तुहा कौनुहा हाजन नौ, कौनुहा उस मारिफा का ये वली, यानी उस तारीफ का। मारिफा से क्या मुराद है? तारीफ ना, तो उस तारीफ का ये वाली नौ होना शर्त है। तारीफ वाली ये नौ होनी चाहिए, कोई और नौ नहीं होनी चाहिए। इबारत हल हो गई या नहीं? देखिए भाई, आई कौनु हाजन नौ मिन जिनसी तारीफी, यानी इस नौ का होना मिन जिनसी तारीफी, जिनसे तारीफ में से। अला अन यकून अल या उ मस्तरियतन, बिना बरिस के कि ये या मस्तर वाली है। बिनाबर इसके कि या मस्दर वाली है, बात समझ में आ गई। ये सारी तकरीर हमने क्या की, या मस्दर वाली है, क्योंकि उसी सूरत में खराबी लाजिम आ रही थी ना कि कौन दो दफा आ रहा था, कौन दो दफा आ रहा था। एक और खराबी भी लाजिम आ रही थी इसमें, क्या? एक तो कौन दो दफा आ रहा था, दूसरी खराबी यह थी कौन आलमियत का क्या तर्जमा पहले कर रहे थे, मस्तरी तर्जमा आलम होना, कौनुहा आलमन, किसका आलम होना, मारिफा का आलम होना, और मारिफा से क्या मुराद है, तारीफ का आलम होना, और तारीफ जात है या वसफ है, वसफ है, और आलम तो क्या होता है, जात होता है। तो दूसरी खराबी यह लाजिम आ रही थी कि आलम यानी जात का हमल हो रहा था वसफ यानी तारीफ पर भाई, और जात का हमल तो वसफ पर सही नहीं। तो जब यह तकरीर कर दी कि आलमियत से हाजन नौ मुराद ले लो, तो अब सारी खराबी दूर हो गई। तरीका समझ में आया, आला अन यकूनल याउ मस्तरियतन औ मनसूबतन। याद रखो ये जो मस्तरियत, मस्तरियत के अंदर ये जो या आई, इबारत पर नजर है, अला अन यकूनल याउ मस्तरियतन, ये मस्तरियत के अंदर ये जो या मुशद्दत और गोलता आ रही है ये निस्बत वाली है। जैसे लाहौरियत उनका क्या माना, लाहौर वाली, तो मस्तरियत उनका क्या माना, मस्दर वाली। तो अला अन यकून अल याउ मस्तरियतन, बिना पर इसके कि या मस्तर वाली हो, औ मनसूबतन इलल आलमी, या मनसूब हो आलम की तरफ। तो ये मनसूबतन का अतः मस्तरियतन पर है भाई। तो कहते हैं अला अन यकून अल याउ मस्तरियतन, इस बिना पर कि या जो है वो मस्तर वाली है, औ मनसूबतन इलल आलमी, ये मनसूबतन का अतः है मस्तरियतन पर, या इस बिना पर कि ये या मनसूब है इलल आलमी। जी ये दूसरी तकरीर करेंगे, और ये दूसरी तकरीर इसको सब ने इख्तियार किया है, पसंद किया है, इस पे कोई इश्काल नहीं। अंतकून आलमियतन, कि आलमियत के अंदर जो या है इसको मस्दर वलिया न बनाओ, इसको मस्दर वलिया न बनाओ, बल्कि इस या को निस्बत वाली या बना दो। जैसे लाहौरियन का क्या माना, लाहौर वाला, तो आलमियन का क्या माना, आलम वाला। और इसी के साथ चूंकि वो मारिफा का लफ्ज पीछे मुअन्नस था तो ताबी ले आए साथ, जैसे लाहौरियन का क्या माना, लाहौर वाला, और मुअन्नस हो तो क्या कहेंगे, लाहौरियतुन। तो यहां पर भी इसी तरह किसकी बात चल रही है, मारिफा की बात चल रही है, मारिफा से मुराद तारीफ है, तो बात किसकी चल रही है, मारिफा की। और वो मारिफा उसके लिए सिफत जब लाएंगे, आलमियन कहेंगे या आलमियतुन कहेंगे, आलमियतुन, की वो मुअन्नस है भाई, बात समझ में आ रही। तो यहां ये आलमियत उनके अंदर या इसको मस्तरियत के लिए ना बनाओ बल्कि निस्बत के लिए बना लो, गोया ये इसमें मंसूब है। ये क्या है, इसमें मंसूब है। और इसमें मंसूब याद रखो, ये जिस इसम के आखिर में या मुशद्दद लगा दी जाए किसी चीज की तरफ निस्बत करने के लिए, इसको इसमें मंसूब कहते हैं। और ये किस वजन पर है, मंसूब उन मफूल उन वजन पर है। तो इसके अंदर फिर याद रखो ये सिफत के सिगे में के दर्जे में होता है, तो ये किस वजन पर है, मनसूब, तो ये मफूल वजन पर है। तो इसके अंदर फिर जमीर भी निकालते हैं नाइबुल फाइल भाई, और बाद इसको इसमें मुंतसिब की तावील में लेते हैं, यानी इसमें फाइल बनाते हैं, और इसमें फाइल के लिए क्या चाहिए, फाइल, तो फिर इसके अंदर हुआ जमीर फाइल के निकालते हैं। मुजक्कर हो तो मुजक्कर की जमीर निकालेंगे, मुअन्नस हो तो मुअन्नस की। तो यहां अलमियतन ये क्या है, मुअन्नस, तो इसके अंदर हिया जमीर निकालेंगे, और अगर आप इसको इसमें मनसूब की तावील में लेते हैं तो हिया जमीर नाई फाइल बनेगी, और अगर मुंतसिब की तावील में लेते हैं तो हिया जमीर फाइल बनेगी। तो ज्यादातर इसको इसमें मनसूब की तावील में ही लेते हैं भाई, बहरहाल सिर्फ लफ्जी इख्तिलाफ है, इससे कोई असर नहीं पड़ता। तो ये इसमें मनसूब भी क्या है, सिफत के सिगे की दर्जे में होता है, और इसमें जमीर निकालते हैं। अब इबारत क्या बन गई, अंतकूना, अंतकूना किस माना में हुआ, कौनुहा, इसके अंदर हिया जमीर है ना, मारिफा को राजे, कौनुहा उस मारिफा का वो जो तारीफ है, आलमियतन कौन सी होनी चाहिए, आलम वाली होनी चाहिए वो तारीफ, अब कोई इश्काल नहीं होता कि शर्तुहा, मारिफा की शर्त ये है, अंतकून आलमियतन, कि वो तारीफ आलम वाली ही तारीफ होनी चाहिए। देखो अब कोई खराबी है, तर्जमे में कोई खराबी लग रही है आपको, वो तारीफ कौन सी होनी चाहिए, आलम वाली होनी चाहिए। तो ये तो या निस्बत की है भाई, ये उसका हमल इस पर हो सकता है भाई। تو کہتے ہیں علی ان یکون الیاء مصدریتن او منصوبتن الی العالمی، یا یہ یا جو ہے منصوب ہے عالم کی طرف، یعنی یہ یا نسبت والی ہے، بی ان تکون حاصلتن فی ضمنہ، با این صورت کہ وہ تعریف جو ہے وہ حاصل ہو رہی ہے، فی ضمنہ اس عالم کے ضمن میں. ادھر دیکھیے وہ تعریف کون سی ہونی چاہیے، علم والی ہونی چاہیے، یعنی وہ تعریف علم کے ضمن میں حاصل ہونی چاہیے، کسی اور ضمن میں، کسی اور کے ضمن میں نہیں ہونی چاہیے. یہ مانا ہے بی ان تکون حاصلتن فی ضمنہ، بائیں صورت کے وہ جو تعریف ہے وہ عالم کے ضمن میں حاصل ہو رہی ہو. علی ان یکون الیاء للنسبتی، بنا برسکے کہ یہ یا جو ہے نسبت کے لیے ہو. یہ دوسری تقریر ہے، بات سمجھ میں آ گئی. یہاں بھائی ان تکون علمیتن، یہ دونوں صورتوں میں علمیتن کو ہم نے منصوب پڑا، یہ تکون کی خبر ہے، توجہ ہے. ہاں ایک ترکیب یہ بھی آپ کر سکتے ہیں یہاں کہ ان تکون علمیتن، کہ اس کانا کو ناقصہ نہ بنائیں تامہ بنا لیں، توجہ ہے. کانا ناقصہ وہ ہوتا ہے جس کے لیے ایک اسم چاہیے، ایک خبر چاہیے. کانا زیدن قائمن، زید کھڑا تھا. اور کبھی کانا تامہ آتا ہے اور وہ بمانے سبتا کے ہوتا ہے، اس کے لیے صرف فاعل آتا ہے. مثلا میں کہتا ہوں کانا زیدن، ای سبتا زیدن، زید تھا، زید تھا، صفت کی کوئی ضرورت نہیں، کھڑا تھا بیٹھا تھا، نہیں نہیں، یہ کانا تامہ ہے. جیسے کانا مطرن، بارش تھی، بارش ہوئی تھی، یہاں کسی خبر کی ضرورت نہیں. تو کانا کبھی تامہ آتا ہے صرف کس کو چاہتا ہے، فاعل کو، آگے کسی مفعول وغیرہ کی ضرورت نہیں. اور یہ کس معنی میں ہوتا ہے، سبتا کے معنی میں. تو اس صورت میں ان تکون اس کے اندر کوئی ضمیر نہیں ہے، بلکہ یہ علمیتن اس کے لیے فاعل بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ علمیتن اس کے لیے فاعل بن جائے گا، پھر اس کو مرفوع پڑھیں گے. اب بلکہ یہ جامی کی عبارت کے زیادہ مطابق ہو گیا، ان تکون علمیتن، بنائیے مصدر، ان تکون سے مصدر بناؤ، کون، اور مصدر کی اضافت کس کی طرف کرتے ہیں، فاعل کی طرف، کون علمیتن، اور علمیت سے کیا مراد ہے، ھذا النوع، تو کیا بن گیا، کون ھذا النوع. دیکھو جامی بھی یہی فرما رہے ہیں، ای کون ھذا النوع، اس نوع کا ہونا، من جنس تعریف، کس میں سے، دیکھا ذرا ترجمہ دیکھ لو متن متن کا، شرطہا ان تکون علمیتن، کانا کو تامہ ہم نے بنایا ہے، اب ترجمہ سنو، شرطہا، اور معرفہ کی شرط یہ ہے، ان تکون علمیتن، ای ثبوت علمیتن، کیا ہونا چاہیے، علمیت کا ثبوت ہونا چاہیے، یعنی اس علمیت کے ضمن میں جن سے تعریف حاصل ہونی چاہیے. شرطہا ان تکون معرفتن، معرفہ کی، معرفہ سے مراد تعریف ہے، تعریف ہے لفظ، تو میں معرفہ بول رہا ہوں کیونکہ ضمیر ہا کی اس کی طرف راجع ہے. تو معرفہ یعنی تعریف کی شرط کیا ہے، ان تکون علمیتن، کہ علمیت ثابت ہونی چاہیے، یعنی یہ والی نوع ثابت ہونی چاہیے، من جن سے تعریفی، کس میں سے، جن سے تعریف میں سے. معنی سمجھ میں آ گیا جی. آگے دیکھیے کہتے ہیں وَإِنَّمَا جُعِلَتْ مَشْرُوطَةً بِالْعَلَمِيَّتِ، بھئی اب وجہ بیان کر رہے ہیں، میں بیان کر چکا ہوں کیا وجہ بیان کی تھی، کہ باقیوں کو کیوں شرط قرار نہیں دیتے، علم تعریف کی تو اور بھی قسمیں ہیں، تو بتلایا تھا کہ باقیوں میں صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ غیر انصراف کا سبب نہیں بن سکتی، کچھ ان میں سے مبنی ہیں اور کچھ غیر انصراف کے خلاف ہیں. مبنی کون کون ہیں، ضمیریں بھی مبنی اور اسماء اشارہ بھی، اسماء موصولہ بھی، اور کچھ کیا ہیں، وہ غیر انصراف کے خلاف ہیں، جیسے الف لام اور اضافت، یہ تو غیر منصرف کو بھی کیا بنا دیتے ہیں، منصرف بنا دیتے ہیں. کہتے ہیں وَإِنَّمَا جُعِلَتْ مَشْرُوطَةً بِالْعَلَمِيَّتِ، اور یہ جو تعریف ہے، یا یوں کو معرفہ، معرفہ بول کر تعریف مراد ہے، کہتے ہیں یہ جو معرفہ ہے یعنی تعریف جو ہے، مشروطتن بالعلمیتی، اس کے ساتھ علمیت کی شرط لگائی گئی ہے، لئن تعریف المزمرات والمبہمات لا یوجد الا فی المبنیات، اس لیے کیونکہ مزمرات اور مبہمات کی جو تعریف ہے، معرفہ ہونا ہے، وہ لا یوجد، وہ نہیں پایا جاتا، الا فی المبنیات، مگر کس کے اندر، مبنیات میں. مزمرات یعنی ضمیریں، مبہمات، مبہمات یاد رکھو نحو کے اندر، یہ اس میں اشارہ اور اس میں موصول کو مبہمات کہتے ہیں، کیونکہ اس میں اشارہ وہ مشار الیہ کا محتاج ہے، اس کے بغیر اس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا، تو وہ بھی مبہم ہے بغیر مشار الیہ کے، اور اس میں موصول کا معنی بغیر صلے کے سمجھ میں نہیں آتا، تو موصول بھی بغیر صلے کے کیا ہے، مبہم ہے، اس لیے ان کو مبہمات کہتے ہیں. تو جب مبہمات کہہ دیا، دونوں چیزیں اس میں آ گئیں، اسماء اشارہ بھی اور اسماء موصولہ بھی. چنانچہ فرماتے ہیں لِأَنَّ تَعْرِیفَ الْمُزْمَرَاتِ وَالْمُبْحَمَاتِ لَا يُوجَدُ إِلَّا فِي الْمَبْنِيَاتِ، اس لیے کیونکہ مزمرات اور مبہمات والی تعریف جو ہے وہ نہیں پائی جاتی إِلَّا فِي الْمَبْنِيَاتِ مگر کس کے اندر؟ مبنیات کے اندر. وَمَنْعُ الصَّرْفِ مِنْ أَحْكَامِ الْمُعْرَبَاتِ، اور منع صرف تو معرب کے احکام میں سے ہے بھائی، وہ تو ہماری بحث سے ہی خارج ہو جاتے ہیں بھائی مبنیات. وَالتَّعْرِيفَ باللامی، اس کا عطف کریں لِأَنَّ تَعْرِیفَ الْمُزْمَرَاتِ، وَالتَّعْرِيفَ باللامی اَوِ الْإِضَافَةِ يَجْعَلُ غَيْرَ الْمُنْصَرِفِ مُنْصَرِفًا كَمَا سَيَجِئُ، اور تعریف باللام یا بالاضافت جو ہے یہ تو غیر منصرف کو بھی منصرف بنا دیتی ہے، کما سیجیئو جیسے کہ عن قریب آ جائے گا بھائی، جب اسم پر الف لام آ جائے یا اس کی اضافت ہو جائے تو اس پر کسرہ آ جاتا ہے. تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ صرف یہ ابھی بھی غیر منصرف ہے، البتہ منصرف کے حکم میں ہو گیا، جبکہ بعض فرماتے ہیں نہیں اب یہ غیر منصرف رہا ہی نہیں بلکہ منصرف بن چکا ہے بھائی. فلا يتصور كونه سببا لمنع الصرف، تو جب یہ غیر منصرف کو منصرف بنا دیتے ہیں، فلا يتصور كونه سببا لمنع الصرف، تو تصور نہیں کیا جا سکتا کہ یہ سبب ہوگا منع صرف کے لیے. فلم يبق الا التعريف العلمي، تو تعریف عالمی کے علاوہ اور کوئی چیز نہ بچی. سمجھ میں آیا بھائی؟ کہتے ہیں وانما جعل المعرفه سببا. جی سوال کہ انہوں نے معرفہ کو سبب بنایا، بھائی علمیت کو سبب قرار دے دیتے کہ غیر انصراف کا ایک سبب علمیت ہے، علم ہونا ہے، جیسے کہ علامہ زمخشری نے کیا ہے مفصل کے اندر، مفصل جسے یہ کافیہ ماخوذ ہے، اس میں انہوں نے علمیت کو سبب قرار دیا ہے، معرفہ یا تعریف کو سبب نہیں قرار دیا، لیکن صاحب کافیہ نے معرفہ یعنی تعریف کو سبب قرار دیا. اس کی کیا وجہ؟ کہتے ہیں وجہ یہ کہ یہ اسباب مناصرف جو ہیں یہ ان سب میں فرعیت ہے، یہ سب فرع ہیں، تو اگر علمیت کہہ دیتے تو اس میں فرع ہونا اتنا ظاہر نہیں تھا، لیکن جب تعریف کہہ دیا اب فرع ہونا ظاہر ہو گیا کہ تنکیر ہے اصل اور تعریف ہے فرع. تو یہ علمیت تنکیر کے مقابلے میں لانا اتنا واضح نہیں تھا، بلکہ کس کو لے آئے اس کے مقابلے میں؟ تعریف کو تنکیر کے مقابلے میں لے آئے، اب تعریف کا فرع ہونا واضح ہو گیا کہ نکرہ ہے اصل اور معرفہ ہے فرع بھائی. کہتے ہیں وَإِنَّمَا جَعَلَ الْمَعْرِفَةَ سَبَبًا وَالْعَلَمِيَّةَ شَرْطَهَا، کہ صاحب کافیہ نے معرفہ کو سبب قرار دیا اور علمیت کو اس کے لیے شرط قرار دیا. ولم يجعل العلمیت سببا، اور علمیت کو سبب نہیں قرار دیا، کما جعل البعض جیسے کہ بعض نے قرار دیا ہے. لان فرعیت التعریف للتنکیر، اس لیے کیونکہ تعریف کا فرع ہونا للتنکیر کس کے لیے؟ تنکیر کے لیے، اظہر یہ زیادہ ظاہر ہے، علمیت کا فرع ہونا تنکیر کے لیے اتنا ظاہر نہیں، تو تعریف کا تنکیر کے لیے فرع ہونا یہ زیادہ ظاہر ہے. من فرعیت العلمیت لہو، کس کے مقابلے میں؟ علمیت کا تنکیر کے لیے فرع ہونا، تنکیر ہے اصل، ایک ہے کہ علمیت کو اس کی فرع قرار دے دیا جائے اور ایک ہے کہ تعریف کو اس کی فرع قرار دے دیا جائے، تو تنکیر کے لیے تعریف کا فرع ہونا زیادہ ظاہر ہے کس کے مقابلے میں؟ کہ تنکیر کے مقابلے میں علمیت کو فرع قرار دیا جائے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے لِأَنَّ فَرْعِيَّتَ التَّعْرِيفِ لِلتَّنْكِيرِ أَظْهَرُ مِنْ فَرْعِيَّتِ الْعَلَمِيَّتِ لَهُ، اس لیے کیونکہ تنکیر کے لیے تعریف کا فرع ہونا یہ زیادہ ظاہر ہے بمقابلہ تنکیر کے لیے علمیت کے فرع ہونے کے. بات سمجھ میں آ گئی؟ سارا حل ہو گیا. چلیے بس بھائی، هذا هو المرام، والله اعلم بحقیقت الکلام.